بادشاہ جیسا اس کا برتاؤ ہے, عالم کے شہنشاہ کے جیسا, اس کو دنیا کی کسی چیز کی درکار نہیں, اس کو دنیا میں کسی چیز کی درکار نہیں. ہے تو آدمی لیکن لگتا ہے بھوشیہ جیسا, وہ ہے تو آدمی لیکن لگتا ہے بھوشیہ جیسا.
जनना भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागताय ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै. जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने, तुजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने, तुजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने.
बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी यहां बैठे हुए हैं. मैं ऐसा हमेशा कहता रहता हूं, पर आज हम हमेशा की तरह तो बैठे ही हैं, लेकिन हमेशा से और अधिक बेहतर होकर के बैठे हैं. अब हम पहले से ज्यादा ज्यादा रिच हो गए हैं. हमने इन 3-4 महीनों में जो कुछ अर्जित किया है वो आज हमारे सामने हमारी एक उपलब्धि की तरह दिखाई दे रहा है. शिवपुरी वालों की प्रशंसा करूं, इससे पहले मैं अपनी कुछ बात कह दूं. भगवान ऋषभदेव जब हुए तब उस समय लोग एक साथ रहना नहीं जानते थे. वे परिवार बनाना, समाज बनाना और किस तरह से जीना है यह भी नहीं जानते थे. कैसे धन पैसा कमाया जाता है, कैसे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके, कोई आर्ट डेवलप करके और कैसे अपने जीवन को समृद्ध किया जा सकता है यह भी नहीं जानते थे. भगवान ऋषभदेव ने उन्हें एक परिवार की तरह रहने की शिक्षा दी, इसीलिए वे कुलकर भी कहलाते थे. एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह सब लोग रहना सीख सकें, इस बात की शिक्षा भगवान ऋषभदेव ने दी थी. बीच बीच में यह परिवार की अवधारणा घटती बढ़ती रही है. वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व मेरा परिवार है, ऐसा कहने वाले संत ऋषि और मुनि भी यहां हुए हैं और ऐसी फीलिंग रखने वाले लोग भी यहां हुए हैं. आज भी ऐसे लोग हैं। ये बात जुदी है कि अब अपना अपना अलग अलग परिवार बना करके हमने रहने की आदत डाल ली है। एक जॉइंट फैमिली का जो आनंद है वो अब धीरे से हमारे जेब में से कहीं गिर गया है, और ये तो बहुत दूर की बात हो गई है कि अब हम सबको अपना मान सकें। फिर भी इन तमाम विषमताओं और विकृतियों के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं शेष रहा है, इसके बावजूद भी कुछ अच्छा शेष है। हमारे इस जो शिवपुरी वालों ने प्रयास किया है उसका पहला उद्देश्य ही है कि ये फीलिंग हमारे भीतर डेवलप हो सके एक बार फिर से कि हम देश के किसी भी कोने के क्यों ना हो लेकिन हम एक हैं, ये सब हमारे अपने हैं। ये फीलिंग आपको देने के लिए यहां पर बुलाया है। और हम सब ने शायद थोड़ी देर के लिए, इन दो दिनों के लिए और इन दो दिनों में कुछ क्षणों के लिए ऐसा जरूर अनुभव किया होगा कि हाँ, हम सब लोग जो एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे आज हम सब लोग जानने लगे हैं और हमारे भीतर उनके प्रति भी प्रेम उमड़ रहा है, जिनको हमने कभी नहीं देखा, जिनसे हम कभी नहीं मिले। क्या ऐसा ही प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में सद्भाव हम ला सकेंगे? मानिएगा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं, महत्वपूर्ण यह है कि वो ऊंचाई हमने किसी को नीचे गिरा के हासिल नहीं की, अपने आप हासिल की। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने सफलता कैसे अर्जित की है, महत्वपूर्ण यह है कि हमने दूसरे को असफल साबित करके स्वयं को सफल नहीं माना है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा पद हमने पाया है, महत्वपूर्ण ये है कि हमने मनुष्य होने की प्रतिष्ठा हासिल की है। पद और प्रतिष्ठा हासिल करने ना इस संसार में कोई बहुत दुर्लभ नहीं है, लेकिन मनुष्य की तरह अपने को स्थापित करना यह बहुत दुर्लभ है। बहुत ऊंचाई पा लेना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी गिरते हुए को संभालना बहुत मुश्किल है। हमारे ऊंचे उठने से कोई नीचा होता है तो हम ऊंचे उठना पसंद नहीं करेंगे। हमारी ऊंचाई किसी के नीचे होने से है ऐसा भाव हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। हमारी सफलता इसी में है। यहां पर जो युवा साथी आए हैं, मैं तो उन्हें युवा साथी कह चुका, अब वे जहां भी रहेंगे वे मुझे अपने साथ रखें तो रखें, मैं हमेशा उन्हें अपने साथ रखूंगा। मेरा एक सपना था कुछ वर्षों से, मेरे और भी सपने हैं, पर आज अगर बहुत सारे सपनों में से एक सपना भी मैत्री समूह और शिवपुरी के लोगों ने मिलकर मेरा साकार किया है, इसके लिए मैं आपको प्रशंसा के शब्द बहुत छोटे हैं, मेरी अपनी भावनाएं आप समझते हैं। मुझे अपने युवाओं से, अपने युवा साथियों से विनोबा की वो बात कहनी है कि मातृहस्तेन भोजनम और मातृमुखेन विद्या। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मां के हाथ का परोसा भोजन किया है और मां के मुख से मनुष्य बनने के लिए कोई शिक्षा प्राप्त की है, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं हो सकता। आज हमारा मन था हम किसी और बहुत बड़े मंत्री को हम राज्यपाल को, हम किसी कुलपति को, हम और किसी को भी आपके सम्मान के लिए बुला सकते थे, लेकिन हमारा मन एक ही जगह था कि कोई मां अपने बेटे को सम्मानित करे। ठीक ऐसे ही जैसे कि उसका बेटा कम टीयर ज्यादा नंबर लेकर उसके पास आता है तब वो उसे प्यार देती है, और आपने उन सुखद क्षणों का अनुभव भी किया है। कल जब सारे युवा साथी एक साथ आए थे तब मेरा मन कितना गदगद हुआ था, आज ये लौट रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं इनसे इतना ही चाहूंगा, मैं बहुत अपेक्षाएं नहीं रखूंगा, मैं इतना ही चाहूंगा ये बहुत बड़े डॉक्टर बन जाए, ये बहुत बड़े इंजीनियर बन जाए, ये बहुत बड़े ऑफिसर बन जाए, लेकिन ये ना भूलें कि मैं मनुष्य पहले हूं, बाद में और कुछ हूं। और एक मनुष्य के प्रति जिस तरह का व्यवहार करता है, वो व्यवहार कहीं भी पहुंचकर अगर ये करेंगे तो मैं मानूंगा कि इन्होंने मुझे भी अपने साथ रखा है। मेरे अपने जीवन में, मैं अपने जीवन के बारे में आपसे और कोई विशेष नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे दो लोगों का प्यार सबसे ज्यादा मिला। पहले नंबर मेरी मां का प्यार और दूसरे नंबर मां के ही समान आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का, और उन दोनों को मैं अपने भीतर महसूस करता हूं हमेशा। आपने देखा होगा कि मुझे जब भी किसी मां को देखता हूं, आप इसे राग माने चाहे जो माने, मुझे हमेशा उसमें अपनी मां ही दिखाई पड़ती है। और उसके भीतर इतना ही नहीं, मुझे अपने गुरु की भी उसी क्षण याद आ जाती है कि उन्होंने भी मुझे मां की तरह एक एक शब्द लिखना सिखाया था। मुझे संस्कृत नहीं आती थी तो छोटा आ छोटा आ मिलके बड़ा आ होता है, देखो पढ़ो, स्लेट पर आचार्य श्री ने मुझे पहले दिन दीक्षा के बाद ये सिखाया था। मुझे दोनों शिक्षाएं मां से ही प्राप्त हुई, संसार की भी शिक्षा और मोक्ष मार्ग की शिक्षा मैं आचार्य श्री को भी अपनी मां ही मानता हूं। हमारे गुरु हमारी मां के समान ही है सब तरफ। अगर ये मातृत्व का भाव हमारे भीतर विकसित हो जाए, विनोबा तो कहते थे कि अगर सबके भीतर मातृत्व आ गया तो हमें अहिंसक कहीं और खोजने नहीं जाना पड़ेगी, हम अहिंसक अपने आप ही हो जाएंगे। एक परिवार में भी आप रहेंगे तो आप अपने जीवन को इस तरह बनाएं, एक परिवार कितना अच्छा हो सकता है, एक परिवार का आकर्षण क्या है, वो चार बातों पर निर्भर करता है। हमने तो इतने सबको अपना परिवार मान लिया है, आप भी ऐसा ही सबको अपना परिवार माने, लेकिन चार बातों का ध्यान रखें। परिवार का आकर्षण, अंडरस्टैंडिंग पहली चीज, आकर्षित होता है वो परिवार जिसमें एक दूसरे के प्रति अच्छी समझ होती है, अच्छी सोच होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग से सारा कुछ गड़बड़ा जाता है, एक अच्छी समझ हम रखें। दूसरे नंबर कॉम्प्रोमाइज, चीजों को लेकर जो कि भौतिक उपलब्धियां हैं उनको लेकर कॉम्प्रोमाइज करें, जो प्राप्त है उसका सुख लें, जो प्राप्त नहीं है उसके लिए वरीड ना हो, एफर्ट जरूर करें, प्रयास जरूर करें, चिंतित ना हो कि ये मुझे क्यों प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त है उसका आनंद लें, ये कॉम्प्रोमाइज है। सर एडजस्टमेंट तीसरी चीज है कि हम अपने विचारों का आग्रह ना रखें तो हम बहुत जल्दी किसी भी चीज में परिवार में एक दूसरे के विचारों में एडजस्टमेंट हो तो वो परिवार का आकर्षण है। आप आगे आने वाले दिनों में ऐसे परिवार की संरचना कर पाएंगे, मैं आपसे ये भी अपेक्षा रख रहा हूं। और चौथी चीज सैक्रिफाइस, ये आज बहुत कठिन हो गया है, दूसरे के सुख के लिए अपने सुख छोड़ देना, उनका त्याग कर देना। यहां तो हम दूसरे के सुख छीन लेते हैं अपने सुख के लिए, नहीं, लेकिन हम अपने सुख छोड़ देंगे दूसरे के सुख के लिए। अगर ये बात हमारे भीतर पैदा हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि हमारा अपना जीवन बहुत समृद्ध नहीं होगा। मैं आज यही भावना भा रहा हूं सब अपने युवा साथियों के साथ कि आगे आने वाले दिनों में वे इस तरह की सफलता अर्जित करेंगे, विद्या के क्षेत्र में भी, और अपनी भावनाओं को परिष्कृत करके श्रेष्ठ भावनाएं ही हमारी सफलता है, और अपने को स्पेशली डेवलप करके अपनी चेतना को बहुत विकसित करके जिसमें कि सबके लिए हित की भावना है, ऐसे अपने चेतना को विकसित करने की कोशिश करेंगे हम सब। आज इसी भावना के साथ आचार्य श्री को मैं बार बार याद कर रहा हूं कि उनकी कृपा से ही जो कुछ भी हुआ है, अगर अच्छा हुआ है तो मानिए वह उनकी कृपा से हुआ है, अगर कुछ थोड़ी कमी रह गई है तो वो मेरी अपनी हो सकती है। आप सब यहां आए, अगर कहीं कोई आपको असुविधा लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्या कहूं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पर आप जहां भी रहें वहां पर अपने जीवन से किसी को असुविधा ना हो ये संदेश लेकर के जाएं। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितने सारे हाथ इसमें लगे रहे हैं, एक बार उनकी तरफ मुड़ के देखें, यहां के सारे लोग किस तरह से जी जान से उसमें जुटे थे, मैं उनके बारे में क्या कहूं, उन्होंने तो इन दो तीन दिनों में धर्म ध्यान ही किया है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं। मैंने जरूर कभी कभी अपने उन सब ये बैठे हुए हैं लोग, कभी जोर से भी, कभी प्यार से भी, कभी डांट के भी, और कहा होगा उसके लिए भी मैं सब शिवपुरी वालों से, मैंने अगर जोर से कह दिया हो तो आप उसको अन्यथा नहीं लें, पर अपन ने जो कुछ भी किया है वो अच्छे के लिए किया है, पता नहीं अपन अच्छा कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं ये तो समय आकर के बताएगा, पर हमारा प्रयास तो जो कुछ भी था उसे अच्छे से करना।
भोवी जांकुर जनना भोवी जांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागताय ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
जय। जय बोली परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय।
हम सभी लोग पिछले कई दिनों से अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं इस बारे में विचार कर रहे हैं। हमारे जीवन में बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। हमारा जीवन पूरी तरह से अच्छा बने, हमारा लक्ष्य तो यही है, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जरूरी ये भी है कि हम निरंतर अच्छाइयों की तरफ बढ़ते जाएं और बुराइयों को कम करते जाएं। अच्छाइयां हमारे भीतर कैसे आती हैं, या कि बुराइयां हमारे जीवन से कैसे घटें, इस पर हमने विचार किया है। बुराइयों के संस्कार बहुत प्रबल हैं, बहुत समय पुराने हैं, इसलिए उनको सहसा हटाना आसान नहीं है। पर वे हट नहीं सकती बुराइयां, ऐसा भी नहीं है। मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूं, ये हमारे भीतर एक आत्मविश्वास जागृत हो जाए, तो कोई वजह नहीं है कि हम अपनी बुराइयों को अपने जीवन से, जिन्हें हम स्वयं बुरा मानते हैं, मजा यह है कि जिन बुराइयों को हम खुद अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, वे बुराइयां हमारे जीवन में हैं, हम चाहते हैं कि वे हमारे जीवन से निकल जाए। और जिन अच्छाइयों को, अच्छी बातों को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वे बहुत मुश्किल तो मालूम पड़ती हैं, पर लाना हमें ही है, ऐसा हमारे भीतर आत्मविश्वास जागृत हो जाए, हम भ्रम तोड़ दें, हम सच्चाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ें। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति रोज अपने बगीचे में और फव्वारे से पौधे सींचता था, रोज का काम था उसका। तो एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे कहा, वो पड़ोसी रोज देखता कि फव्वारा लाता, वो फव्वारा होता ना, उसमें पानी भर करके और फिर सींचते हैं उसको, उसमें से निकलता, तो वो रोज देखता था। तो उसने एक दिन कहा कि सुनो, तुम फव्वारा तो रोज सींचते हो, लेकिन इसमें से पानी वानी तो निकलते ही नहीं, क्योंकि वो उसमें पानी भरते ही नहीं था, पर फव्वारा पर सींचता था वो। हाँ, तो उसने कहा, तुम रोज मैं देखता हूं कि फव्वारे से पानी सींचते हो, लेकिन उसमें पानी वानी तो निकलता नहीं। तो उसने कहा, पानी की वैसे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फूल सब प्लास्टिक वाले हैं। बड़ा अजीब आदमी, उसने कहा, जब तुम्हें ये मालूम है कि फूल सब प्लास्टिक वाले लगाए हैं तुमने अपने बगीचे में, तो फिर फव्वारे से ये गौर करने की क्या जरूरत। तो उसने कहा, सुनो, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे जैसे पड़ोसियों के लिए, नहीं तो फूल खिले रहे और उन पर पानी न सींचा जाए तो पता लग जाएगा कि प्लास्टिक के, इसलिए मैं रोज पानी ही सींचने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में भी, इसको सुनकर के तो हंसी आती है, पर हमारे जीवन में भी क्या ऐसा नहीं है, अच्छाइयां करने का ढोंग करते हो हम? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ लोगों को दिखा रहे हो कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोगों के अंदर इस बात का भ्रम पैदा करने के लिए कि वे हमें सिर्फ अच्छा माने, हम भले ही अच्छे हों या ना हों? भैया, संभव है ऐसा? आज के समय में देखने में यही आता है कि हमारा अंतरंग उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि हम अपने बाहर अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर की मलिनता ज्यों की त्यों बनी रहती है, बाहर धो पहुंच के लोगों के दृष्टि में हम भले मालूम पड़े, ऐसा हम व्यवहार करते हैं, पर बताइए, ये दूसरों के ठगने से ज्यादा अपने को ठगना नहीं कहलाएगा? जब जानते हैं कि जीवन में इन अच्छाइयों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर उनको दोहराते क्यों हैं? क्यों हम फव्वारे में, जब मालूम है कि प्लास्टिक के फूल हैं, जबकि हमें अपने जीवन को बदलने नहीं है, तो फिर हम अपने जीवन को बदलने का और बाह्य क्रियाओं को करने का क्यों भ्रम खड़ा करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में अगर अपने अंतरंग को बदलने के लिए उत्सुक हैं तो हमें वास्तव में देखते रहना चाहिए कि हमारा अंतरंग बदल रहा है या नहीं, या कि सिर्फ हम बाहर बाहर से सिर्फ कह रहे हैं कि हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं। हमारे जीवन में सुख है, हमारे जीवन में दुख है, लेकिन हम सचमुच दुख है इस बात को स्वीकार कर पाते हैं? पहली जरूरत है अच्छे बनने की या कि सुखी होने की, कि अपने दुख को हम स्वीकार कर लें, अपनी बुराइयों को हम स्वीकार कर लें। हम किसी के भी सामने अपनी बुराइयों को स्वीकार कर सकते हैं? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना रागत द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम। भगवान के सामने जाकर के प्रतिक्रमण कहते हैं पापिष्ठेन दुरात्मना, मैं पापात्मा हूं, दुरात्मा हूं। मली मसेन मनसा, और बड़े मलिन हृदय से आपके सामने आके बैठ गया हूं, राग द्वेष की मलिनता मेरे भीतर है, ऐसा भगवान के सामने कह सकते हैं। और अगर कोई अपन से कह दे भाई आकर के कि आप बड़े पापी हो, बड़े दुरात्मा हो, तो कैसा लगता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। अपने मुंह से हम खुद कह रहे हैं, लेकिन दूसरा अगर यही चीज कहे तो हम अपनी बुराई को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मजा यह है, हम अपनी बुराई को जानते हैं, लेकिन दूसरा अगर कोई हमें बुरा कहे, हम अपने दुख को जानते हैं लेकिन दूसरा कोई हमें दुखी माने हम ये नहीं चाहते, दूसरा हमें सुखी ही मानता रहे, हम इस भ्रम में जीते हैं। पहली चीज, अगर जीवन में दुख है अपनी बुराइयों की वजह से, तो उस दुख को हम स्वीकार करें, बहुत अंतरंग से स्वीकार करें। लेकिन होता यह है कि दुख भी हमें सुख जैसा लगने लगता है, लग ही रहा है। अगर हम देखें जो हम संसार में इतने सारे दुख पाने के बीच भी उसी में लगे हुए हैं, इसके मायने हैं कि हम उसको दुख नहीं मानते। देखिए, किसी भी चीज को कोई बुरा माने और उसे छोड़ ना पाए, हाथ में गरम गरम चाय आ जाए तो क्या हम पूछने जाते हैं भैया बहुत गरम लग रही, मन तो कर रहा है कि छोड़ दें, छोड़ दें क्या आप बताओ? नहीं, इतनी देरी नहीं लगती है, तुरंत के तुरंत हाथ अलग हो जाते हैं और छूट जाती है। क्या ठीक ऐसा ही हमारे मन में दुख के प्रति एहसास है क्या? यदि हमें वास्तव में बुराइयां अपने जीवन में अच्छी न लगें, लगने लगे कि सचमुच मेरा जीवन बहुत खराब है, तो क्या हम अपने उस जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत नहीं करेंगे? जैसे कि चाय गर्म लगने पर हमारे हाथ तुरंत छूट जाते हैं, क्या बुराइयां, जिस दिन हम अपनी बुराइयों को अपने दुखों को खुद स्वीकार कर लेंगे उस दिन वे छूटे बिना नहीं रहेंगे। अभी अगर नहीं छूट रहे हैं तो कसौटी है, नहीं छूट रहे हैं इसका मतलब भले जान पड़ रहे हैं। इतनी संसार की वास्तविकता का हम विचार करते हैं, कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि संसार में सुख है ही नहीं है। अबे कोई से भी लेक्चर करवा लो एक आधा घंटा को, बढ़िया कर दे वो कि संसार में दुख है, सुख है ही नहीं। लेकिन उसी संसार में जिस तरह रचे पचे हैं उससे तो लगता यही है कि जैसे इसी में सुख है, नहीं लगता। इसका मतलब है कि कहीं कोई स्वीकृति नहीं है दुख की। लेकिन इतना ही नहीं, दुख को स्वीकार भी नहीं करते हैं कि हाँ सचमुच मैं दुखी हूं। उल्टा यह होता है कि हम दुख को ही सुख मान बैठते हैं कि हाँ यही सुख है। दुख के प्रतिकार से उत्पन्न होने वाले सुख को सुख मानने वाले हम लोग, थोड़ा सा वेदना का प्रतिकार हुआ, 105 बुखार था और 100 हो गया, किसी से पूछें कि कैसा है, कहते अब तो साता है। प्रतिकार हुआ है सिर्फ दुख का, अभी सुख की प्राप्ति हुई नहीं है, लेकिन कैसा लगता है कि जैसे मिल गया, 105 थे तो 100 फिर भी ठीक है, झेल लेंगे, सहन कर लेंगे। ये हम लोगों के अंदर उन दुखों के प्रति जो स्वीकृति है वो खत्म होती चली जा रही, क्योंकि लगातार हम दुख भोगते हैं और उस दुख को दुख ही नहीं मानते हैं। हमारे भीतर कैसे सुख प्राप्ति की कोई ललक पैदा होगी, क्योंकि हमने उस दुख को ही सुख मान लिया। ऐसा हुआ था एक बार, एक उसमें क्या बोलते हैं, जेल में एक नया कैदी पहुंचा, तो उसको भी वही बैरेक अलॉट हुई जिसमें कि पुराने और कैदी थे, तो उसमें से एक कैदी बड़ा दबंग था वो, जब ये नया कैदी पहुंचा और भीतर जाकर के अपना सामान रखने लगा, उसने कहा सुनो हमारा को बाहर। अरे आप भी कैदी हैं और हम भी कैदी हैं और आप कह रहे हैं कि वहां बाहर रखो। कहने लगा अभी अभी नए नए आया हो, यहां 5 साल से हैं, जरा रहो तब पहुंचोगे भीतर, अभी तो यहां पर हम हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो जेल में 5 साल पुराना कैदी है वो जेल को अपनी बपौती मान रहा है, जेल को अपना घर मान रहा है। वो उस नए आने वाले से कह रहा है कि बाहर ही रख लो, तुम अभी नए नए आए हो, हम यहां 5 साल से हैं। हम लोग के साथ भी यही है, ये वाली खुली वाली जेल है नए आने वाले को, ऐसे ही हम भी व्यवहार करते हैं। हमने इसी में सुख मान लिया है, उसे हम घर बना लेते हैं, जेल को भी हमने घर बना लिया, हमने दुख को भी सुख में कन्वर्ट कर दिया है। अब उस दुख से बचने का उपाय कौन करे? पहली सच्चाई है, यदि हम अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो दुख को स्वीकार कर लें। जिस दिन हम दुख को स्वीकार कर लें कि हां सचमुच मैं दुखी हूं, उस दिन दुख से निजात पाने का, उस दिन दुख से बचने का उपाय अपने आप सामने आ जाएगा। किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि दुख से बचने का, भीतर से कभी ये आवाज नहीं आई है कि हम सचमुच दुख हैं। जिस दिन जिस चीज के लिए भीतर से आवाज आती है, देखना आप, वो चीज हम फिर नहीं दोहराते। जैसे छोटे से बच्चे को तो समझ में आ जाती है, मां कितनी समझाती कि देखो आग से दूर रहो, हमने कितनी बार कहा कि लालटेन से दूर रहा करे जल जाओगे, वो नहीं मानता। लेकिन एक दिन अगर उंगली जल जाती है तो उसके बाद मां जिद भी करे कि हाथ डाल दो, नहीं डालता, वो जल्दी समझ जाता है। लेकिन हम इतने रिजिड हो गए, हमें अंतरंग से ये बात अनुभव में नहीं आती कि सचमुच यहां इस संसार में जहां हाथ डालता हूं वहां से सिर्फ दुख निकलता है। यहां मैं व्यर्थ ही सुख पाने की चेष्टा क्यों करता हूं? दुख को सहने की सामर्थ्य तब आती है जब हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं। दुख हम स्वीकार नहीं कर पाते इसलिए दुखी होते हैं। दुख को अगर स्वीकार कर लो तो दुख होने की कोई बात नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जिन क्षणों में हम दुखों को स्वीकार कर लेते हैं उन क्षणों में फिर दुख हमें दुखी नहीं कर पाते। हमने मान लिया कि हां दुख है, अब वो दुख मुझे विषाद में नहीं डाल सकता। मैं उस दुख पे चलते भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। कई लोग हैं जो इस तरह करते हैं, वे फिर दुख को दुख भी मानना स्वीकार नहीं करते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं दुख होने के बावजूद भी। तो दुख को स्वीकार करना पहली सच्चाई है। और अगर कोई दुख है मेरे जीवन में, बुराई है मेरे जीवन में, तो कोई कॉज होना चाहिए। विदाउट कॉज एनी इफेक्ट मे बी नॉट पॉसिबल। कोई बिना कारण के कारी हो सकता है क्या? तो क्या कारण हो सकता मेरे दुखों का? एक बाह्य कारण होता है और एक बहुत भीतरी कारण होता है। बाह्य कारण पर तो मेरा ध्यान चला जाता है लेकिन भीतरी कारण पर मेरा ध्यान नहीं जाता। मेरी अपनी बुराई का कारण क्या? मेरे सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं बुरा हूं, मेरे एजुकेशन की वजह से मैं बुरा हूं, या कि मेरे अपने एक्सपीरियंस की कमी की वजह से। तीन ही चीजें सफलता के लिए हैं, तीन ही चीजें असफलता के लिए, एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। मेरे अनुभव की कमी, मेरे ज्ञान की कमी और मेरे आसपास का वातावरण, ये मुझे दुखी करते हैं। ऐसा मैं निर्णय ले लेता हूं, क्या करो मैं अज्ञान हूं इसलिए दुखी हूं, क्या करो मुझे कोई संसार का अनुभव नहीं है इसलिए मुझे दुख झेलना पड़ रहा है, क्या करो मेरे चारों तरफ दुखी लोग ही रहते हैं इसलिए मुझे दुख भोगना पड़ता है। नहीं, ये बहुत बाह्य कारण है। परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होंगी तो क्या हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे? क्या कभी हम बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो क्या हम सुखी नहीं हो पाएंगे? ज्ञान तो इतना ही पर्याप्त है कि दुख मालूम पड़ने लगे कि हाँ दुख है और वो कारण मेरे भीतर ही है, बाहर कोई कारण नहीं है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़े किसी और ज्ञान की फिक्र नहीं करना। अनुभव तो रोजमर्रा का है, उसी दुख से रोज गुजर रहे हैं, फिर कौन से अनुभव की कौन सी हमें कमी है? इन तीनों चीजों पर हम विचार करते हैं, ये बाह्य कारण है। इन बाह्य कारणों को तो हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन इन बाह्य कारणों को संभाल लेने से भीतर का दुख मिट जावे ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत ज्ञानवान लोग भी बहुत तनाव में और बहुत दुख में हैं, जिनके पास बहुत अक्षर ज्ञान है। बहुत अनुभवी लोग 80-80 साल के जिन्होंने कि संसार में अनुभव किए हैं वे भी दुखी हैं। बहुत अच्छे वातावरण में डनलप पर सोने वाले भी रात ठीक से नहीं गुजार पाते हैं। जैनेन्द्र कुमार ने अपने संस्मरण में लिखा कि मैं सोचता था कि ये जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल कुछ अलग ढंग की होती होगी। मैंने तो कभी अपने जीवन में एक कमरे से ज्यादा दूसरा कमरा देखा नहीं, एक में ही सारा परिवार सो जाया करता है। मैंने सुना है कि वो इतने बड़े आदमी हैं कि उनसे उनके 365 दिन के 365 कमरे हैं, उनके 365 दिन के 365 रसोइयां हैं जो उनको रोज नई नई डिश बनाते हैं, तो जरूर वे बहुत सुखी होंगे। मैंने कहा एक बार चल के उनको देखता हूं। तो जनेंद्र कुमार लिखते हैं कि मैं उनको देखने गया, तो मैं जैसा जैसा सोच के गया था मैंने सोचा था कि वे जरा अलग ढंग से खाते होंगे, अपन सीधे सीधे खाते हैं, वो ऐसे खाते होंगे, कुछ तो होगा, समथिंग इज एक्स्ट्रा, कुछ होगा जो कि अतिरिक्त होगा हम लोगों से, क्योंकि बहुत बड़े आदमी है सुना। और फिर हमने तो ये तक सोचा, दिन भर तो हम उनको देखते रहे लेकिन वो हमारे जैसे ही खाते थे, चलाते थे वैसे ही, बात भी वैसे ही करते थे, कुछ भी हमें अतिरिक्त नहीं मालूम पड़ा। हमने सोचा शायद दिन भर नहीं पता लगा हो, रात सोते समय जरा दूसरे ढंग से सोते हो, 365 कमरे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर सबने सोते होंगे। लेकिन देखा हमने, अपने संस्मरण में सुना रहे हैं वो, कि हमने देखा कि जब वे जनाब जिनका इतना दबदबा, जिनके चारों तरफ इतने नौकर चाकर, जिनका आलीशान भवन, लेकिन वे भी जब सोए तो पैर सुकोड़ के सोए थे, सो 6 फुट के पलंग में 3.5 फिट में ही समा गए थे। हम चुपचाप उनके दर्शन करके घर वापस आ गए। हमने कहा हम ज्यादा सुखी हैं उनकी अपेक्षा, इतनी चीजें उनके ऊपर लगी हैं, पर सोते तो वे 3.5 हाथ में ही हैं और कोई बहुत विशेष बात नहीं। हमारे एनवायरमेंट चेंज हो जाने से हमें सुख मिल जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उनको कौन सा सुख मिला है। लेकिन हमें लगता है कि जिसके पास सुख सुविधा के साधन अधिक हैं वो ज्यादा सुखी है, जिसके पास ज्ञान ज्यादा है वो ज्यादा सुखी है, जिसको जीवन का अनुभव है वो ज्यादा सुखी है, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है दुख से बचने और सुख को भीतर में महसूस करने का, तो वो है अपने नजरिए का, अपने एटीट्यूड का, अपने सोच के ढंग का। जो व्यक्ति जितना सेटिस्फाइड है, जितना संतुष्ट है अपने जीवन से, वो उतना ज्यादा सुखी है। जो व्यक्ति वाणी में दुख के कारण उपस्थित होने से मुझे दुख हो ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा मानता है, उसे कोई बाहर का कारण दुखी नहीं कर सकता। बाहर का कारण उसे ही दुखी कर सकता है जो भीतर से दुखी है। कितने भी विपरीत परिस्थितियां हो, मैं अगर अपने मन को प्रसन्न और खुश रखना चाहता हूं तो कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। और सारे सुख सुविधा के साधनों के बीच भी मेरे अंतरंग में अगर असंतोष है तो मैं उसी क्षण से दुखी होना शुरू हो जाता हूं। दुख का मेजर कॉज क्या है अगर खोजें हम तो, और दुख से बचने का उपाय क्या है, और वास्तविक सुख की स्थिति क्या है, अगर ये चार बातें हम अपने जीवन में ठीक ठीक जान ले गए तो हमारा जीवन सुखी हुए बिना, अच्छा हुए बिना रहेगा नहीं। सुख का अंतरंग कारण और दुख का अंतरंग कारण मेरे ही भीतर है। दुख का अंतरंग कारण मेरा असंतोष है। मैं बहुत सोचता रहा कि और कोई भी चीज हो सकती है क्या, अज्ञान दुख का कारण हो सकता है, असंतोष ही दुख का कारण है। असंतोष से बड़ा अज्ञान क्या होगा बताइए मुझे, यही तो अज्ञान है कि मैं अपने जीवन से असंतुष्ट हूं। अनंत शक्ति वाला आत्मा होकर के भी मैं अपने जीवन से असंतुष्ट हूं, उससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। मुझे अपनी उस अनंत शक्ति का भान नहीं है, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। तो अज्ञान कह लें असंतोष कह लें, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असंतोष से जल्दी समझ में आता है, ज्ञान से तो अपन को लगता है कि अभी अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। अक्षर ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से संतोष मिट जाता है। जो आत्मज्ञानी होगा, जितना आत्मज्ञानी होगा उतना संतोषी भी होगा, या जो जितना संतोषी है वो उतने ही आत्मज्ञान की तरफ है, वो प्राप्त कर सकता है। असंतोषी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर नहीं सकता, कर भी लेगा तो उसके जीवन में ठीक वो फव्वारे की तरह हो, प्लास्टिक के फूलों की तरह हो। है बहुत लोगों को शब्द में आत्मज्ञान, लेकिन अंतरंग में, अंतरंग का आत्मज्ञान अगर एक बार पैदा हो जाए तो जीवन संतुष्ट हो जाए और सुखी हो जाए उसी क्षण से। एक किसान था, बहुत संतुष्ट, बहुत सुखी, उससे ज्यादा उस गांव में कोई सुखी नहीं था। एक आदमी आया लेकिन एक दिन उसके पास, और उसने कहा, सुनो तुमने कभी हीरे देखे? उसने कहा, हीरे ये होता क्या है? बहुत वैल्यूबल है क्या? बहुत कीमती होता है क्या? हाँ बोले, बहुत कीमती होता। अगर तुम्हारे पास एक अंगूठी बराबर भी हीरा हो ना, तो तुम एक पूरा शहर खरीद सकते। उसने कहा, वंडरफुल, खरीद सकते पूरा शहर? उसने कहा, क्या बात करते हो, अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी हीरे हैं तो तुम पूरा देश खरीद सकते। उसने कहा, स्पेन, अमेरिका, सब खरीद सकता हूं। हाँ, फॉरेन का था वो किसान, तो उसने कहा, सब खरीद सकते हैं, न्यूयॉर्क सिटी भी। उसने कहा, न्यूयॉर्क सिटी भी खरीद सकते। उस रात वो किसान जो सबसे सुखी और संतुष्ट था, ठीक से सो नहीं पाया। जो सबसे सुखी और सबसे संतुष्ट था उस गांव का वो किसान, जिसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं महसूस होती थी, अब उसे लगता है कि ज्यादा नहीं, एक अंगूठी के बराबर तो हीरा होता। क्या उपाय है? सारी रात सोचता रहा और सुबह उसने निर्णय ले लिया कि ऐसे घर बैठे उस कीमती चीज को कैसे पाया जा सकता है। और कहते हैं कि जितनी जमीन उसके पास थी उसने सारी बेच दी, और जो आया उस पूंजी को लेकर निकल गया हीरे को खोजने के लिए। महीनों गुजर गए, वर्षों गुजर गए, आर्थिक रूप से तंगी हो गई, शरीर थक गया, मन भी हार गया, और एक दिन हार हूर करके और उसने अपने जीवन को किसी नदी में कूद करके नष्ट कर दिया। वो जो व्यक्ति जिसको कि वो जमीन बेच के गया था, उस जमीन में आराम से खेती करता था, एक दिन ऐसा हुआ कि उस जमीन के पास से निकले हुए नाले में वो अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए गया, और वहां पर एक चमकदार पत्थर उसे दिखाई पड़ा। वो लेके आया और अपने ड्राइंग रूम में उसको रख लिया। बहुत चमकदार पत्थर था। वही व्यक्ति जिसने उस किसान से कहा था कि तुमने कभी हीरा देखा, वही व्यक्ति आया और उसने कहा कि लगता है वो लौट के आ गया है। कहते, कौन? वो जो यहां किसान रहता था वही हो ना तुम? बोले, नहीं, वो तो चला गया, वो तो मुझे बेच के गया। बात क्या है बताओ? तो कोई बात नहीं है, ये जो सामने रखा है ना, इसी की बात मैंने की थी उससे। ये तुम्हें कहां से मिला? उसने कहा, ये कहां से मिला? ये कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? ये कहां से मिला ऐसा पूछ रहा? अरे वार्ड डले हैं वहां पर, हम जहां से अपने अपने ऊंट को पानी पिला के लाते हैं वहां वार्ड डले। हमने सोचा एक आध ले चलो, घर में रखेंगे, जमाएंगे, अच्छे लगेंगे। उसने कहा, जानते हो, ये जितना हीरा तुम, ये जितना पत्थर रखे हो चमकदार, इस पत्थर से पूरा शहर खरीदा जा सकता है। और मुझे दिखाओ कहां है ऐसे पत्थर। जाता है वो भागा भागा, देखता है तो ढेर सारे उस नाले में जहां से कि वो अपने अपने खेतों में पानी सींचता था, वहां पर ढेर सारे पड़े हैं। क्या अर्थ हुआ इस घटना का? जहां है वहां असंतुष्ट हैं, तो कहीं भी रहेंगे वहां पर भी असंतुष्ट ही रहेंगे। जो चीज हमारी है वो वही है, वही थे हीरे, उसी जगह जहां से कि वो हीरे खोजने निकला था। और हम कहां खोज रहे हैं सुख और कहां मान रहे हैं दुख? कहीं ना बाहर सुख है ना कहीं बाहर दुख है, वो मेरे भीतर ही बैठा हुआ है। जहां जहां वो रहता था, जिसको बेच करके वो उन हीरों की खोज में जहां गया था इस जीवन में, ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। अगर हम थोड़ा सा गौर से अपने जीवन में झांक करके देखें तो सुख और दुख दोनों को, अच्छाई और बुराई को, दोनों को हम अपने भीतर ही पाते हैं। कहीं बाहर कोई बुराई बाद में होती है, मेरा मन पहले बुरा होता है। कहीं कोई भलाई बाहर बाद में होती है, मेरा मन भला पहले होता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति दूसरे को बुरा कहता है दूसरा बुरा बाद में होगा, पर यह तो तय हो गया कि भला आदमी नहीं है। जो दूसरे को बुरा कहे वो भला तो नहीं हो सकता, और जो दूसरे को भला कह रहा है, ध्यान रखना सामने वाला भला हो या ना हो, पर यह बहुत भला आदमी है जो दूसरे को भला कह रहा है। ये ऐसे गणित हैं, ये भलाई और बुराई के गणित बहुत आंतरिक हैं, लेकिन हम पता नहीं कहां कौन से भ्रम में और उलझे हुए हैं। कोई बात नहीं, सभी उलझे हुए हैं, मैं भी आप में शामिल हूं, सबके साथ यही स्थिति है। ये बात अलग है कि थोड़ी सी कभी किसी की आंख खुल जाती है उसको दिखने लगता है, फिर आंख बंद हो जाती है। अपन सबके साथ जितनी देर यहां बैठे हैं थोड़ी आंख खुलती खुलती है, चीज समझ में आती है, फिर उसके बाद फिर झपक जाती है, फिर उसी दौर में शामिल हो जाते हैं जो अभी तक चल रहा था। लेकिन अगर हम ऐसा प्रयास निरंतर करते रहे अपने स्वयं के द्वारा और हमारे भीतर अपने मन में यह आत्मविश्वास जागृत हो जाए कि मैं इन दुखों से बचने का उपाय खोज सकता हूं और मैं अपने जीवन को सुखी बना सकता हूं, वो वास्तविक सुख कौन सा है, ये जो पांच इंद्रिय और मन से मिलने वाला सुख है वो बहुत बाहरी है, मेरे भीतर भी एक सुख है जो इन विषयों से व्यक्त होने पर प्राप्त होता, इन विषयों को जितना छोड़ता हूं उतना मुझे वो सुख प्राप्त हो सकता। अगर ये हमारे भीतर आ जावे, इतना सा काम करना है, जैसे कि अभी लगता है कि ये चीजें मेरे पास होंगी तो मैं बहुत सुखी होऊंगा, और जिस दिन ये लगने लगे कि ये चीज मेरे पास नहीं होगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये चीज भी मेरे पास नहीं रहेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत कठिन है मामला, लगता बहुत आसान है कहने सुनने में, पर कार जिसके पास है वो ही जानता है कि कितना सुख है। आप नहीं जान सकते, आप कहीं बैठे नहीं कार में, वो जानता कितना सुख, उससे कहा आप कि इस कार को छोड़ दो उसमें ज्यादा सुख है, वो कहेगा महाराज अपनी फ्लास भी अपने पास रखो, आपको भी कभी कभी कार की जरूरत पड़ जाती है जब आपकी चटाई ले जाना पड़ती, तब वो ऐसा जवाब दे रहे हो। हां, लेकिन कहीं भीतर में ये नहीं लगता है कि इन चीजों के ग्रहण करने में त्याग है या कि इन चीजों के छोड़ने में सुख है। ये भ्रम के भीतर अगर लगने लगे कि मेरी जितनी आवश्यकताएं कम होंगी उतना मैं सुखी होऊंगा, इतना हमारे भीतर मन के विश्वास जागृत हो जाए। आखिरी बात मुझे कहनी है, सुख मेरे भीतर है और वो आत्म सुख मेरे भीतर है, भौतिक सुखों में जितना मैं उलझा रहूंगा उतना मुझे आत्म सुख कम मिलेगा, मैं जितना भौतिक सुखों से विमुख होऊंगा मैं आत्म सुख उतना अधिक पाऊंगा, प्रयोग करके देख लेना। जब तक घर में गाड़ी नहीं आई थी चिंता नहीं रहती थी, लेकिन आप खुद देखते हैं, मेरे अपने जीवन का अनुभव बताता हूं, क्योंकि बिना गैराज बने और स्कूटर खरीद के ले आए थे, सो बाहर गली में रख देते थे, दिन में तो ठीक है, रात में पहले कभी नींद नहीं खुलती थी 10 बजे के सोए 4 बजे तक, फिर उसके बाद तो हर 2 घंटे के बाद बालकनी में से नीचे झांक के देख लेते रखी है कि नहीं रखी। ये आपके साथ नहीं होता होगा, आपके गैराज होगी उसमें आप रख देते होंगे, संभव है। पर है तो ये वास्तविकता कि जितनी जितनी हमारे भीतर असंतोष और जितनी जीत जितनी हमारे भीतर बाह्य वस्तुओं से सुख पाने की लालसा बढ़ती चली जाती है, उतना उतना दुख का इंतजाम हम खुद करते चले जाते हैं। किसी से क्या पूछने जाना है कि मेरे दुख क्यों है, किसी से क्या पूछने जाना है कि मेरे सुख कैसे आएगा, हमारे जीवन में रोज हम अनुभव करते हैं कि दुख ऐसे आता है और दुख से ऐसे बचा जा सकता है और सुख ऐसे आ सकता है, कोई को बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। लेकिन बस ये है कि एक बार हमारे अंदर ये ललक ये विश्वास पैदा हो जाए, आत्मविश्वास पैदा हो जाए। मुझे एक घटना याद आती है आत्मविश्वास की, मैं तो उसको पढ़ के दंग रह जाता हूं कि ऐसा आत्मविश्वास भी हो सकता है। अभी तो हम सब लोग बहुत अपने मन से हारे हुए लोग हैं, अगर देखा जाए तो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं हो पाता कि हम ऐसा कर पाएंगे, इतना विचार तो हमने कर लिया पर हम आगे इसको फॉलो कर पाएंगे ये विश्वास नहीं होता हमको, ये लगता है कि ये संभव नहीं है, ये तो सिर्फ कहने सुनने की है। नहीं, अकेले कहने सुनने की नहीं है, हम कर सकते हैं, जिस दिन भी हम ठान लें उस दिन कर सकते हैं। तो दूसरी चीज हमें अब अपना आत्मविश्वास भी पैदा करना पड़ेगा। जितना जितना असंतोष से बचेंगे, जितना हम संतोष पाएंगे, उतने हम दुख से बच जाएंगे, और जितना हम आत्मविश्वास पैदा करेंगे उतने सुख की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। दुख से बचने का उपाय बता दिया, सुख को पाने का उपाय भी दोनों चीजें हैं। एक छोटा सा उदाहरण उस व्यक्ति का, जो कि इतना कॉन्फिडेंट था अपने स्वयं के बारे में। हम बच्चों को भी कहां कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को विश्वास कहां सिखाते हैं, दूसरे पर अविश्वास करना सिखाते हैं। ना हमें अपने ऊपर खुद विश्वास है, ना हम किसी को विश्वास सिखाते हैं। आज हम दूसरे के प्रति अविश्वास करना सिखाते हैं, अपनी क्षमताओं पर भी हमें विश्वास नहीं है। ना हम दूसरे को कभी ये कहते हैं कि आपके अंदर भी ऐसी क्षमताएं हैं, आप विश्वास करें। तो अपनी क्षमताओं पर जो जिसे स्वयं विश्वास ना हो, अपनी उस अनंत शक्ति पर जिसे स्वयं विश्वास ना हो, वो कैसे अपने जीवन में सुख पा सकता। हमारा स्वभाव ही अनंत सुख वाला है, ऐसा कभी अपने को लगता है क्या? नहीं, हम तो हमेशा से दुखी ही हैं और हम उस अनंत सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे हारे हुए लोग कभी सुख नहीं पा सकते। थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करिए, मानिएगा कि हमारे पास अनंत शक्ति है और उस अनंत शक्ति से हम अनंत सुख पा सकते हैं। ऐसा हमारे भीतर एक एहसास तो पैदा हम कर ही लें। रोज रोज दर्शन करते हैं भगवान के, उनसे क्या मैसेज देना चाहिए, यही कि ठीक ऐसी ही अनंत सुख और अनंत शांति की अवस्था मेरी भी है, मैं भूला हुआ। जब जब आपके पास आता हूं तो याद आ जाता है, जब जब आपकी तरफ पीठ होती है तो भूल जाता है। अब हमेशा आपके सामने ही रहूं, कभी मेरी पीठ आपकी तरफ ना हो। मैं संसार में भी रहूं पर मेरे सामने हमेशा मेरी वो जो आत्म शक्ति है बनी रहे, तो कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। क्या हुआ एक बार कि एक जहाज में यात्रा करते थे लोग, और जहाज की यात्रा तो बहुत लंबी होती है, कई कई दिन तक चलती है, पानी वाला जहाज। और महीनों यात्रा अपने नगर निकल गए, बड़े शांति से यात्रा हो रही थी, हजारों यात्री उस जहाज पर थे। और एक दिन अनाउंस हुआ कि बहुत तेज है तूफान, किसी भी क्षण तूफान बढ़ करके जहाज को डुबा सकता है। जिसको अपने अंतिम क्षणों में जो भी करना हो वो कर ले, सब मुश्किल में पड़ गए। कोई भी तो ऐसा नहीं था जो कि घबराया ना हो। उसमें से कई लोग तो ये भूल गए कि इस अवसर पर उन्हें ईश्वर को याद करना चाहिए। जिनने जिंदगी भर भगवान को याद किया था, जिनने जिंदगी भर दूसरों पर अपना शासन चलाया था, दूसरों पर अपना दबदबा बनाया था, जो अपने को बहुत शक्तिशाली मानते थे, बेबी घबरा गए। और इधर से उधर भाग दौड़ मच गई। मेरे ख्याल से तो जितनी तूफान से जहाज नहीं हिल रही थी, उतनी लोगों की घबराहट से हिलने लगी। जिंदगी बाहर के तूफानों से उतनी नहीं डगमगाती जितनी भीतर के भय से डगमगाती। ऐसा ही है, हमें अपने प्रति जब विश्वास नहीं होता, हमें अपनी योग्यताओं का एहसास नहीं होता, तब भी हमारे जीवन में यही घटित होता है। और उन सबके जीवन में भी घटित हुआ, लेकिन एक व्यक्ति उनके बीच ऐसा भी था जो डेक पर आराम से सोया था, निश्चिंत एकदम। ऐसे तूफान में भी उसे नींद आ गई। लोगों ने उसे जाकर के जगाया। उसने कहा मैं तो जाग रहा हूं। उसने कहा जाग रहा हूं, हम तो सोच रहे तुम सोए हुए हो, तुमने अनाउंस नहीं सुना। अच्छा जाग रहे हो तो तुम्हें मालूम है क्या अनाउंस हुआ? उसने कहा वो भी मालूम है, यही ना कि तूफान आ रहा है, जहाज डूब जाएगा। उसने कहा इतना मालूम होने के बाद भी तुम इतने शांत और इतने चुपचाप लेटे हो, तुम्हें जरा भी भय नहीं लगता? उसने कहा मुझे अपने ऊपर विश्वास है, जो कुछ भी घटित होगा वही ना घटित होगा, जो भी घटित ही नहीं हुआ मैं उसको लेकर के चिंतित क्यों? जो घटित होगा तो देखें। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख ऐसे हैं जो कभी घटित नहीं हुए, लेकिन वे घटित ना हो जाए इस बात का दुख हमेशा बना रहता है। इस बात का भय हमेशा बना रहता, वो वाली विपत्ति ना आ जाए, वो वाली विपत्ति ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे बहुत सारे दुखों का कारण भी यह है। वो तो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था जब लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो बहुत भय लग रहा है, उन्होंने कहा तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं, मुझे तो विश्वास है, तो तुम अपने विश्वास का कोई प्रयोग करके बताओ, क्या तुम तूफान रुका सकते हो? उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो अपने मन को जीत ले वो सबको अपने वश में कर सकता है। जैसे महाराज कह रहे थे कि जब आपका पांच इंद्रियों में वश नहीं है तो और किसी पर को अपने वश में क्या करोगे आप। उसने कहा मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं अपने आप को अपने वश में रखता हूं, तो मैं जिसको चाहूं उसको वश में रख कर सकता हूं। और कहते हैं उस घटना में, पता नहीं घटना सही है या नहीं है, पर मुझे तो लगता है कि हाँ, अगर इतने इतने कॉन्फिडेंट हम अपने प्रति होंगे तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी। कहते हैं उसने डेक पे खड़े होकर के और हाथ ऊंचा करके उस तूफान जो कि समुद्र में उठ रहा था उससे मालूम क्या कहा, पीस बी स्टिल, पीस बी स्टिल, तीन बार कहा उसने, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और कहते हैं चाहे कोइंसिडेंस कहो, चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहो, जो कहना हो वो कहो, चाहे ईश्वर की कृपा कहो, लेकिन तूफान शांत हो गया। भीतर का तूफान अगर शांत हो जाए तो बाहर के सारे तूफान शांत हो सकते हैं, लेकिन भीतर जो राग द्वेष का तूफान हमने अपने भीतर खुद मचा रखा है, जो हमने दुख के उपाय अपने भीतर खुद कर रखे हैं, जो हमने सुख से विमुख होने की कोशिशें स्वयं कर रखी हैं, अगर उन कोशिशों को बंद कर दें, सुख से विमुख होने की कोशिश और दुख के नए नए साधन उत्पन्न करने की कोशिश बंद कर दें, तो सुख तो हमारा स्वभाव है, कहीं से हमें उसे खोजने और लाने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे अपने खुद के भीतर है। कोशिश करें अपन इतनी सारी बातें समझने के बाद इसमें से कोई भी बात थोड़ी बहुत भी अगर अपने जीवन में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन से दुख कम ना हो, हमारे जीवन से बुराइयां कम ना हो और हमारे जीवन में सुख ना आए, हमारे जीवन में अच्छाइयां ना आए। इसी भावना के साथ कि हम सब अपनी बुराइयों को कम करें और अपनी जो वास्तविक योग्यता है, जो अच्छाई है, उसको अपने भीतर प्रकट होते देखें। मेरे साथ नमोकार।
Siddha Mangalam.
क्षमा केवली पन्नतो धन्यो लोगुत्तमो चत्ताई शरणं प्रव्रजामि Yeah.